नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारत में 1% सबसे अमीर लोगों के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। दूसरी ओर नीचे से 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा ही है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के पहले दिन सोमवार को यहां अपनी वार्षिक असमानता रिपोर्ट में अधिकतर समूह ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने ये जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 10 सबसे धनी लोगों पर 5% कर लगाने से बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए पूरा धन मिल सकता है। इसमें कहा गया, सिर्फ 1 अरबपति गौतम अडानी को 2017 से 2021 के बीच मिले अवास्तविक लाभ पर एक मुश्त कर लगाकर 1.79 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं, जो भारतीय प्राथमिक विद्यालयों के 50 लाख से अधिक शिक्षकों को एक साल के लिए रोजगार देने को पर्याप्त है। सबसे धनी की उत्तरजीविता शीर्षक वाली रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर भारत के अरबपतियों की पूरी संपत्ति पर 2% की दर से एक मुश्त कर लगाया जाए तो इससे भारत में अगले 3 साल तक कुपोषित लोगों के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। आने वाले 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार 2 का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसीलिए इस बजट पर सभी की नजरें रहेंगी। मोदी सरकार 2 के आखिरी पूर्ण बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टीम के 6 दिग्गज आईएएस तैयार कर रहे हैं। सबसे अहम बात, 6 में से 3 आईएएस एक ही बैच के ऑफिसर हैं। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी और वित्त सचिव के रूप में बजट की तैयारी का नेतृत्व टीवी सोमनाथन कर रहे हैं। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं ने सोमनाथन के कार्य को जटिल बना दिया है, क्योंकि उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि बजट किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम हो। एक्सपेंडिचर रेशनलाइजेशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश के आने वाले वित्तीय वर्ष में भी मुख्य आधार बने रहने की संभावना है। उनकी देखरेख में स्थापित नई व्यय प्रबंधन प्रणाली ने केंद्र के संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग की अनुमति दी है, जिससे सिस्टम में फंड फ्लोट कम हो गया है। इसका फायदा पूरी तरह फाइनेंशियल ईयर 24 में दिखेगा। 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा पिछले साल अक्टूबर में राजस्व विभाग में शामिल हुए थे। मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को कहा कि उसने अपनी सभी मॉडलों की कीमतों में करीब 1.1% की बढ़ोतरी की है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में दूसरी बार मूल्य वृद्धि की है। इससे पहले अप्रैल 2022 में वाहनों की कीमत बढ़ाई गई थी। मारुति सुजुकी ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि वो बढ़ती लागत के प्रभाव को कम करने के लिए अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। इसके साथ ही अप्रैल 2023 से लागू होने वाले सख्त उत्सर्जन मानकों के अनुरूप मॉडल बनाने के कारण भी कीमतें बढ़ी हैं। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया, विभिन्न मॉडलों के वाहनों की कीमत में औसत लगभग 1.1% की बढ़ोतरी होगी। ये सांकेतिक आंकड़े की गणना दिल्ली में शोरूम कीमत के आधार पर की गई है। ये वृद्धि 16 जनवरी 2023 से लागू होगी। कंपनी अपनी शुरुआती छोटी कार ऑल्टो से लेकर SUV ग्रैंड विटारा तक विस्तृत श्रृंखला के वाहन बेचती है, जिनकी दिल्ली में शोरूम कीमत 3.39 लाख रुपए से 19.49 लाख रुपए के बीच है। वैश्विक बाजारों में मजबूती और आईटी शेयरों में लिवाली के बीच सोमवार को प्रमुख शेयर सूचकांकों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 325.59 अंक चढ़कर 60,586.77 पर पहुंच गया। व्यापक एनएसई निफ्टी 93.05 अंक बढ़कर 18,049.65 पर था। सेंसेक्स में विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कोटक महिंद्रा बैंक, टेक महिंद्रा और SBI बढ़ने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। विप्रो ने शुक्रवार को कारोबार खत्म होने के बाद दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए थे। दूसरी ओर महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, NTPC, मारुति और टाटा मोटर्स में गिरावट देखने को मिली। अन्य एशियाई बाजारों में सोल, शंघाई और हांगकांग में बढ़त थी, जबकि टोक्यो में गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को हरे निशान में बंद हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.54% गिरकर $84.82 प्रति बैरल पर आ गया। शुक्रवार को सेंसेक्स 303.15 अंक पर या 0.51% की बढ़त के साथ 60,261.18 पर बंद हुआ था। इसके साथ ही निफ्टी 98.40 अंक या 0.55% चढ़कर 17,956.60 पर बंद हुआ था। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को शुद्ध रूप से 2,422.39 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। डॉलर में कमजोरी और घरेलू शेयर बाजारों में मजबूती के बीच रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की तेजी के साथ 81.29 रुपए पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि विदेशी कोषों के लगातार बाहर जाने से निवेशकों की भावना प्रभावित हुई, जिसने रुपए की बढ़त को रोका। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार रुपया डॉलर के मुकाबले 81.29 पर खुला, जो अपने पिछले बंद भाव से 9 पैसे की वृद्धि दर्शाता है। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे की गिरावट के साथ 81.38 पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.32% गिरकर 101.87 पर आ गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.53% गिरकर $84.83 प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को शुद्ध रूप से 2,422.39 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iJanSatta.com पर नमस्कार।